हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शिविका ने उन सबकी नज़रें खुद पर महसूस कीं। थोड़ा चिढ़कर बोली, पापा, क्या हम नाश्ते पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? करण अपनी शर्ट की बाजुएं ऊपर कर सीढ़ियाँ उतर रहा था। बातचीत सुनकर बोला, नाश्ता? मेरे बिना? गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसकी आवाज़ सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर गया। गर्मी के बावजूद वो बेहद आकर्षक लग रहा था। उसने आज ऋषभ के स्टाइलिश और फंकी कपड़े पहने थे, जो उस पर बहुत जंच रहे थे। करण सीढ़ियाँ उतरकर सीधे मिस्टर खन्ना के पास गया और उनके पैर छुए। मिस्टर खन्ना मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, आओ, गुड मॉर्निंग, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। देखो, शिविका भी अभी तक डाइनिंग हॉल में नहीं गई है। पापा प्लीज़, शिविका ने बीच में टोका। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो साथ में नाश्ता कर लो, ऑफिस जा रहे हो ना तुम दोनों? उसके पिता ने बात बदली। वे समझ रहे थे कि दोनों अभी अपना रिश्ता सार्वजनिक नहीं करना चाहते। करण के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि शिविका थोड़ी निराश लग रही थी। वो सबसे पहले डाइनिंग हॉल की ओर भाग गई। कुछ देर बाद, लगभग 10 बजे, दोनों शिविका की कार से ऑफिस के लिए निकले। रास्ते में करण थोड़ा परेशान लग रहा था। उसने शिविका से अब तक कोई बात नहीं की थी और बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहा था, मानो किसी के कॉल या मैसेज का इंतजार कर रहा हो। शिविका ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने आईपैड पर शेड्यूल, मीटिंग और बाकी काम चेक कर रही थी। पर फिर उसने करण से बात करने की सोची और उसकी ओर देखकर बोली, आज तुम्हें समय नहीं मिलेगा ना मेरा शेड्यूल बनाने का? देखो, मैंने पहले ही दिव्या को बोल दिया था, मैं तुम्हें मेल कर देती हूँ। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। शिविका ने ध्यान से देखा, वो खिड़की के बाहर देख रहा था, किसी सोच में डूबा हुआ था। उसने उसके चेहरे के सामने हाथ ले जाकर हवा में चुटकी बजाई। करण का ध्यान उसकी ओर गया। वो बोला, हाँ, क्या हुआ, कुछ कह रही हो क्या तुम? करण के अचानक चौंकने पर शिविका ने शक भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए पूछा, कहाँ खोए हुए हो और ये बार बार फ़ोन क्यों चेक कर रहे हो? किसी के कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो क्या? हाँ, मतलब समर, मेरी उससे कल से बात नहीं हुई है। अजीब बात है कि उसने भी मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। मैं बिना बताए तुम्हारे घर पर रुक गया और फिर भी इतनी देर में वो लड़का 100 बार फ़ोन कर लेता मुझे। करण ने पूरी बात बताई। अच्छा समर, वो तुम्हारा छोटा भाई जो हॉस्पिटल में मिला था, वही ना? शिविका थोड़ी रिलैक्स हुई। हाँ वही, लेकिन पता नहीं क्यों कॉल नहीं आई उसकी। करण फिर उसी तरह सोचने लगा। अच्छा, मुझे तो लगा तुम्हारी उससे बात हो गई होगी, शायद रात को तुमने उसे बता दिया होगा, नहीं किया था क्या? शिविका ने लापरवाही से कहा। करण ने सिर हिलाकर ना कहा। शिविका हल्के से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, हो सकता है वो भूल गया हो या थका हुआ हो, बिजी भी हो सकता है। तुम खुद उसे कॉल क्यों नहीं कर लेते? अरे मैंने किया था, कल रात भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया जा रहा था और आज सुबह से जितनी बार भी डायल किया स्विच ऑफ ही जा रहा है, इसलिए मुझे और चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ है वो। करण ने जवाब दिया। अच्छा, कहीं जाने वाला था क्या वो, किसी ऐसी जगह? शिविका ने पूछा। नहीं, वो इतनी रात को कहीं नहीं जाता है। शाम को कोचिंग सेंटर से वापस आने के बाद अगर लेट हो जाता है तो मुझे ज़रूर कॉल करके बता देता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। करण परेशान था। शिविका ने करण के हाथ पर हाथ रखा और उसकी ओर देखकर उसे दिलासा दिया। डोंट वरी, वो ठीक होगा, और वैसे भी वो इतना छोटा भी नहीं है। तुम शायद उसे बच्चे की तरह ट्रीट करते हो, इसीलिए तुम्हें इतनी चिंता हो रही है। करण ने गहरी सांस ली। हाँ शायद, बट आई होप सब ठीक हो। वैसे तुम्हारा भाई भी घर पर नहीं था, तुम्हें उसकी चिंता नहीं होती? शिविका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। कौन, ऋषभ? अरे उसका तो रोज का है, जब उसका मन करता है घर आता है, जब मन करता है जाता है, कभी कार में ही सो जाता है, कभी किसी बार से फोन कॉल आता है, तो कभी कोई दोस्त सुबह घर छोड़कर जाता है। अरे लेकिन ये सब ठीक तो नहीं है ना, वो क्यों इस तरह से खुद अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है? करण फिर से गंभीर हुआ। शिविका ने भी ठंडी सांस ली और बेबसी से बोली, हाँ मुझे भी पता है, इस तरह की नाइट लाइफ, पार्टी और घूमना फिरना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, अब वो नहीं सुनता तो मैं क्या करूँ? मेरे हिस्से और भी तो जिम्मेदारियाँ हैं, पापा का ट्रीटमेंट, काव्या, ऑफिस वर्क, सब कुछ तो मैं ही देखती हूँ, ऐसे में ऋषभ को हमेशा तो पैम्पर नहीं कर सकती मैं। करण ने गंभीर होकर सिर हिलाया। हाँ, शायद शायद तुम ठीक कह रही हो। ऋषभ इतना भी छोटा नहीं है, तुमसे 1-2 साल ही छोटा होगा। उसे खुद भी सब कुछ समझना चाहिए, या फिर समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम हो उसे शेयर करना चाहिए तुमसे अपनी फैमिली के साथ, जिससे कि उसका सल्यूशन निकले। शिविका थोड़ी निराश हुई। हाँ, यही तो पता नहीं चलता कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। परेशान हो गई हूँ मैं। करण ने उसके हाथ पर हाथ रखा और दोनों हल्के से मुस्कुराए। उनकी कार ऑफिस बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में पहुंच गई थी। कार रुकते ही दोनों बाहर निकले और लिफ्ट की ओर बढ़ने लगे। तभी करण का मोबाइल फोन बजा। स्क्रीन पर घर का नंबर था। उसे ज्यादा घर से कॉल नहीं आती थी, इसलिए वो थोड़ा हैरान हुआ और रुक गया। करण को लिफ्ट के बाहर रुके देखकर शिविका ने हाथ से लिफ्ट बंद होने से रोका और चिल्लाई, क्या हुआ करण? कमॉन, लिफ्ट का दरवाजा क्लोज हो जाएगा। करण ने उसे 2 मिनट रुकने का इशारा किया, क्योंकि लिफ्ट के अंदर नेटवर्क नहीं आता। लेकिन शिविका जैसे ही अंदर कदम रखा, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। करण पार्किंग एरिया में ही रुककर कॉल रिसीव करके बात करने लगा। शिविका ने सोचा कि जरूर कोई जरूरी कॉल होगा, काम से रिलेटेड या फिर उसके भाई का। कुछ देर में करण ऑफिस आ ही जाएगा। ये सोचकर शिविका लिफ्ट से ऊपर ऑफिस में आ गई। सभी ने गुड मॉर्निंग विश किया और शिविका ने भी जवाब में सबको गुड मॉर्निंग बोलते हुए सीधे अपने केबिन की ओर बढ़ गई। वहां उसे 5-10 मिनट ही हुए थे कि उसका मोबाइल फोन बजा। वो बाहर करण को देख रही थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। वो उसके बारे में सोच ही रही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। शिविका ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर कोई अननोन लैंडलाइन नंबर था। वो थोड़ी कंफ्यूज हुई और कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो दी, मैं यहाँ सिटी हॉस्पिटल में हूँ, क्या आप मुझे लेने के लिए कार भेज सकते हैं? ऋषभ की आवाज सुनकर शिविका परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ऋषभ इस तरह किसी लैंडलाइन से कॉल क्यों कर रहा है और हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गया। थोड़ी देर पहले ही कार में वो करण से ऋषभ के बारे में बात कर रही थी। उसे ऋषभ की चिंता थी और अब ये फोन। शिविका ने तुरंत परेशान होकर पूछा, ऋषभ तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? और तुम रात में कार लेकर निकले थे ना, वो कार क्यों नहीं है तुम्हारे पास? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा कोई एक्सीडेंट? ऋषभ ने उसे शांत किया। रिलैक्स रिलैक्स दी, काफी डाउन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, कार खराब हो गई थी कल रास्ते में। और फिर? ऋषभ की नज़र उसके सामने बैठे समर पर पड़ी, जो अब तक उसके साथ था। ऋषभ के घर या दोस्तों में से कोई नहीं आया था और समर उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। थोड़ी देर चुप्पी रही। शिविका ने पूछा, और फिर क्या हुआ? कार खराब होने के बाद तुम हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? कार को लेकर मैकेनिक के पास जाते हैं, ज्यादा पी रखी थी क्या तुमने? ऋषभ ने कहा, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ दी, बाद में बताता हूँ सब। अभी प्लीज यहाँ हॉस्पिटल का बिल क्लियर कर दीजिए और कार भेज दीजिए, यहाँ से निकलूँ पहले मैं। शिविका चेयर से उठकर खड़ी हुई। ठीक है, रुको, मैं बस अभी आती हूँ।
ऋषभ ने तुरंत मना किया, अरे नहीं दी, आप ऑफिस और काम में बिजी होंगी ना, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस कार। शिविका ने उसे डांटा, चुप करो तुम ऋषभ, पता नहीं क्या कांड करके बैठे हो, ठीक से कुछ बता भी नहीं रहे हो, मैं आ रही हूँ, बस तुम वहीं रहना। ऋषभ ने धीमी आवाज में कहा, ओके दी। दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शिविका मोबाइल रखकर तेजी से बाहर निकली। ऑफिस के बाहर वो करण से टकरा गई, जो उसी तरह तेज कदमों से अंदर आ रहा था। दोनों परेशान लग रहे थे। शिविका ने उसे ऋषभ के बारे में बताया। करण भी उसे कुछ बताना चाहता था, लेकिन फिलहाल वो उसके साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं जाना चाहता था। क्रमशः